Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 23421050 and 23314444. Once again, 23421050 and 23314444. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hain Market Mantra ke ek aur taaza ank ke saath. Is karyakram mein desh videsh ki aarthik khabron ka jaiza lenge. साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर. शनिवार छुट्टी का दिन होने के बावजूद आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार हुआ है. इस खबर पर भी हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ. और हर शनिवार की तरह इस बार भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं. दो टेलीफोन लाइन हमने खोले हुए हैं. नंबर हैं 2342-1050 और 2331-4444. दोनों नंबर दिल्ली के. 011 एसटीडी कोड के साथ फोन करें, अपने सवाल पूछें, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट शिशिर सिन्हा हमारे साथ स्टूडियो मौजूद. शिशिर, बहुत बहुत स्वागत मार्केट मंत्रा में.
वार्म वेलकम शिशिर.
थैंक यू, नमस्कार.
और शुरू करते हैं मार्केट मंत्रा हेडलाइंस इंग्लिश में.
इंडियन स्टॉक मार्केट एंड सैटरडे स्पेशल सेशन ऑन अ पॉजिटिव नोट. Sensex crosses 74,000 level. Nifty reaches above 22,500. US stocks ends higher, Dow finishes above 40,000 for the first time. And crude oil prices push past $80, Brent reaches at $83.98 per barrel. West Texas Intermediate shows gain of 1%.
विशेष सत्र के तहत आज BSE NSE में कारोबार हुआ. सेंसेक्स 74,000 के पार तो निफ्टी 22,500 अंक के ऊपर पहुंचा. अमरीकी बाजारों में भी मजबूती. डाउ जोन्स पहली बार 40,000 के ऊपर पहुंचा. और कच्चे तेल की कीमतें $80 के पार हुई. ब्रेंट क्रूड प्रति बैरल $83.98 पर पहुंचा. WTI में भी 1% की बढ़त. शनिवार छुट्टी का दिन होने के बावजूद शेयर बाजारों के लिए आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में विशेष सत्र के तहत कारोबार हुआ. दोनों ही शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन मजबूती बनी रही. सेंसेक्स 0.12% बढ़कर 74,005 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 35 अंक बढ़कर 22,502 पर रहा. आज के सत्र में दो भागों में कारोबार हुआ. पहले 9:15 से 10 बजे तक कारोबार हुआ और फिर 12:15 से लेकर 12:40 तक शेयरों की खरीद बिक्री हुई है. थोड़ी सी चर्चा करेंगे, हमारे साथ सुनील कुमार हैं, आप इंतजार करिए. सबसे पहले आज के शेयर मार्केट पे आमतौर पर लोग जानना चाहेंगे कि ये कारोबार शनिवार को क्यों हुआ विशेष.
देखिए, आज का जो विशेष सत्र था वो आपदा प्रबंधन का एक हिस्सा था कि किसी भी तरीके की अनिश्चितता या ऐसी कोई व्यवस्था बिगड़ती है उसमें शेयर बाजार कैसे काम कर सकता. और दो अलग अलग कंडीशंस में 1:15 से जो शुरू हुआ और वहां पर भी उसी तरीके से कारोबार हुआ जैसे नियमित सोमवार से शुक्रवार के बीच जो आप 9 से 3:30 के बीच देखते हैं, जिसमें 9 से 9:15 जो आपका प्री ओपनिंग होता है और फिर 9:15 के बाद नॉर्मल होता है, उसी तरीके से हुआ. लेकिन आज के कारोबार में खास बात यह रही कि कुछ जो खरीद बिक्री हुई उस पर काफी बैनी नजर थी और कुछ खास कंपनियों के, चूंकि बीती रात कई ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से लोगों की आज शेयर बाजार पे नजर थी. तो छुट्टी का दिन था लेकिन शेयर बाजार में उत्साह था.
सो वी विल गो टू आवर फर्स्ट कॉलर सुनील कुमार फ्रॉम दिल्ली. अ वार्म वेलकम सुनील. सुनील, कैन यू हियर अस?
हाँ जी सर.
सुनील,
अपना सवाल पूछे प्लीज.
हाँ जी सर, मैं सुनील कुमार ठाकुर बोल रहा हूँ. मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ सर.
हाँ जी.
एक सवाल तो ये जो केवीपी है किसान विकास पत्र, इसमें हमने मतलब डिपॉजिट किए हैं, तो इसमें ज्यादा फायदा है कि मतलब कोई जैसे LIC वगैरह होता है उसमें पैसा डालने में कैश बैक जैसे मिलता है उसमें फायदा है, ये मुझे थोड़ा सुझा दीजिए। और दूसरा सवाल मेरा ये है, जो मेरा पास करीब 15 साल से PF कट रहा है, लेकिन अभी फिलहाल मैंने 6 साल से PF नहीं उठाया है, तो नहीं उठाया है तो इसमें मुझे फायदा है कि नुकसान है, ये मुझे थोड़ा सुलझा दीजिए।
ओके सुधीर जी, पहला जो सवाल है आपका किसान विकास पत्र पे, देखिए डाकघर में 12 तरह की छोटी बचत योजनाएं हैं, जिनमें से किसान विकास पत्र की जो कहने खासियत है कुछ अलग होती है। पहली वजह तो यह है कि इस पे किसी भी तरह का कर लाभ नहीं मिलता है, कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप पैसा लगाते हैं तो आपको पैसा जमा करने के समय आपको टैक्स पे छूट मिलती है, और उसके बाद जब उसमें इंटरेस्ट बनता है उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है जो कट जाता है, और फिर आप जब विड्रॉ करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है।
कह सकते हैं
बिल्कुल। तो आम जो तकनीकी भाषा में अगर हम इसको हम कहें तो किसान विकास पत्र ईई की श्रेणी में नहीं आता, यानी कि एग्जेम्प्ट टैक्स या एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन हाँ, इस पर ब्याज की दर काफी बेहतर होती है, और एक और खास बात यह है कि एक तय समय के बाद ये पैसा दुगना हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि ये इकलौती सरकारी योजना है जो आपको दुगने पैसे होने की गारंटी देता है, लेकिन हाँ इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि आपने पीएफ में लगा रखा है, अगर मैं समझ पा रहा हूं तो आप इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए GPF होता है, या फिर आप वहां पर अगर आप 1 जनवरी 2004 के बाद आए हैं तो आपके लिए जो है वो नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम का आप हिस्सा है। अगर आपने पीएफ से पैसा नहीं निकाला तो अच्छी बात है, आपका पैसा वो जमा होता रहे और वहां पर जो आपका एक्यूमुलेशन होगा वो काफी अच्छा होगा। जब आप रिटायर होंगे 60 साल की उम्र के बाद तो एक निश्चित रकम आप निकालेंगे, उस पर आपको एक पैसा भी कर नहीं देना है, तो ये आपके लिए एक भविष्य की सुरक्षा के लिए एक बेहतर विकल्प है, इसे बनाए रखें।
सपोज रिटायरमेंट कैन ही कंटिन्यू टू कीप द फंड्स इन द अकाउंट
इन इफ यू
गेट इंटरेस्ट
या इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ईपीएफ, ईपीएफ यू कैन कंटिन्यू बट आफ्टर सम टाइम से आफ्टर द एज ऑफ 70 देयर विल बी सम इश्यू, सो इट्स बेटर टू put your money in NPS where you can earn interest even after the age of 70. So that would be the better thing, and also you can withdraw the money and put it in the public provident fund in say 1,50,000, which is purely EEE. You don't have to pay tax any time.
Okay.
And the second option would be to put your money in the senior citizen saving scheme, because after retirement that will give you a better return.
So that would be post office.
And another thing is the monthly income scheme of the post office. So these are some of the schemes where you can put the money and earn regular income, because putting money in EPF may not give you the same kind of return which you can have from these kind of schemes. So my advice would be to go for the senior citizen, some part in the monthly income scheme, because the limit is there, the 30 lakh limit is there, and you can put a yearly contribution of 1.5 lakh in.
So you do have TDS deductions in the post office scheme also?
In some of the schemes where the EET system is there, that's an exempt tax, there you will have to pay the tax at the time of withdrawal. Like NSE, National Saving Certificate, this is called ETE. That means when you are putting money up to 1,50,000 rupees under Section 80C of the income tax, you don't have to pay income tax on the contribution. Whatever interest you are earning, that is accumulated and the TDS will be deducted and the surplus will be invested. Mm-hmm. And when you are withdrawing the money, you don't have to pay the tax because tax has already been deducted.
Okay. We have two callers online with us, one from Mumbai and the other from Delhi. First, we go to Mumbai and speak to Harish. A warm welcome, Harish.
नमस्कार। हाँ सर, मैं घंटी के पर्सन हूँ सर, मैं 5 साल से बैटरी देन हूँ, बेड पर हूँ, तो मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या सिंपल प्रोसीजर है?
हरीश जी, ये एक पहले तो मुझे इस बात पे कहना होगा कि आप जल्दी स्वस्थ हों, जल्दी से जल्दी आप एक बेहतर स्थिति में आए। और जहां तक पैन और आधार कार्ड लिंक करने का है, ऑनलाइन सिस्टम काफी अच्छा काम करता है, एक बार कोशिश करके देखिएगा, या फिर आप किसी से मदद भी ले सकते हैं, इसमें कोई बहुत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए।
योगेश शर्मा हमारे अगले कॉलर होंगे। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है?
जी शुक्रिया आपका। मेरा सवाल सर ये है कि माइक्रो कैप इंडस्ट्री में अभी निवेश करने के हमारे पास क्या क्या जरिए हैं इंडिया के अंदर में, माइक्रो कैप म्यूचुअल फंड के अंदर? और सर एक ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होते हैं और इसमें क्या रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं?
देखिए, पहला जो आपका जो माइक्रो कैप का सवाल है, ये बहुत ही एक नया एरिया भी है, इस सेंस में कि पहले हम लोग बात करते थे स्मॉल कैप की, मिड कैप की, लार्ज कैप की, अब हम लोग बात माइक्रो कैप की भी करने लगे हैं। तो यहां पर आप जा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर थोड़ा सा जोखिम ज्यादा है। जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप में भी थोड़ा होता है जोखिम, लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा होता है। तो मेरी सलाह ये होगी कि अभी आप अपना जो पोर्टफोलियो है वो उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही माइक्रो कैप में रखेंगे तो कर सकते हैं। देखिए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड या AIF जिसको कहते हैं, ये बेसिकली लार्ज इन्वेस्टर्स के लिए, इसमें छोटे इन्वेस्टर की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि इसका कॉर्पस काफी बड़ा होता है, इसमें थ्रेशोल्ड काफी हाई होता है। तो बेहतर है कि आप, अगर पैसा आपके पास सरप्लस है, तो आप या तो आप म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप में लगाएं, डाइवर्सिफाइड में लगाएं, मनी मार्केट में लगाएं, या बैलेंस फंड में जाएं। और इसके अलावा अगर आप लगा सकते हैं तो आप जो पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसमें रख सकते हैं। तो आप अपने रिस्क को जो है ना, जिसे कहते हैं कि हेजिंग आप कर सकते हैं, बाड़बंदी कर सकते हैं, कुछ पैसा आप इन जगहों पर लगाएं जहां पर आपके जोखिम की सुरक्षा हो सके।
बट वुड यू रिकमेंड SIP?
SIP इज द बेस्ट वे, आई मीन वेन यू आर एंट्रिंग इन टू म्यूचुअल फंड एंड आई मीन स्टॉक मार्केट, डायरेक्ट एंट्री इन टू स्टॉक मार्केट और पुटिंग मोर एंड मोर मनी इन द स्टॉक मार्केट डायरेक्टली इज नॉट अ गुड आइडिया। द बेटर इज द गो फॉर द SIP। इट जस्ट लाइक यू आर हैविंग 3 meals a day, यू डोंट रिलाय जस्ट ऑन 1 meal a day, बिकॉज 1 meal a day इज नॉट गोइंग टू गिव यू द थिंग विच यू नीड, योर बॉडी नीड्स दैट। सो बेटर टू गो फॉर द 3 meals a day। सो सिमिलरली इफ यू आर प्लानिंग योर इन्वेस्टमेंट, SIP इज अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड SIP इन अ डायवर्सिफाइड काइंड ऑफ स्कीम्स, एंड यू कैन हैव 2 or 3 schemes rather than putting your entire money in just one scheme. My advice would be to go for 2 or 3 schemes, that will give you a better return.
Moving on, the US stocks ended mostly higher on Friday, with the Dow Jones Industrial Average modest gains taking the blue chip gauge to a finish above 40,000 for the first time ever. The Dow gained 134 points or 0.3% to close at 40,003, clinching a fresh record peak. The S&P 500 rose 6 points or 0.1% to end at 5,303, and the Nasdaq Composite slipped 12 points or 0.1% to finish at 16,685. All the three major indices logged weekly gains as investors appeared encouraged by signs that U.S. inflation eased in April based on a May 15 reading from the Consumer Price Index. For the week, the Dow climbed 1.2%, the S&P 500 advanced 1.5%, and the technology-heavy Nasdaq rose 2.1%. The S&P 500 and the Nasdaq each increased for a fourth straight week, while the Dow notched the fifth straight week of gains. All three benchmarks scored their longest weekly winning streaks since the stretch ending Feb 9. We have two callers online. KK Sinha from Faridabad and Hasmukh Dedia from Mumbai. First, we go to Faridabad and say hello to KK Sinha. Mr. Sinha, please go and ask your question.
Okay. मार्केट बचा टीम को मेरा नमस्कार।
जी नमस्कार।
और एक्सपर्ट सिन्हा साहब को मेरा नमस्कार।
नमस्कार सर।
मेरा ये एक सवाल है कि डिफेंस सेक्टर में 2-3 दिनों से काफी तेजी है, इसका क्या कारण है? मतलब इट इज लाइक राइजिंग लाइक एनीथिंग, तो कोई विशेष कारण है क्या? इसके बारे में कुछ बताते आप।
देखिए, डिफेंस या रक्षा का जो सौदा, रक्षा के जो क्षेत्र की कंपनियां हैं जिनके शेयरों में आप तेजी देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे कि पिछले 3 से 6 महीने के भीतर काफी बड़े पैमाने पर नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। नए ऑर्डर्स में ये कहने का मतलब नहीं है कि हम बहुत ज्यादा आर्म्स और एम्युनेशंस बना रहे हैं या फिर हम फिर डिफेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके साधन बना रहे हैं, बल्कि पहले जो काफी चीजें आयात होती थी अब वो हमारे देश में बड़े पैमाने पर बनना शुरू हुई हैं और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात के भी उनके अच्छे खासे ऑर्डर हैं। तो इन दोनों का मिला जुला रुख यह है कि रक्षा क्षेत्र के शेयरों में काफी तेजी हमने देखी है। एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच में दुनिया के कई देश जो हैं वो अपने यहां इस तरह के साजो सामान को खरीद रहे हैं जो कि भारतीय कंपनियों के लिए एक अच्छा मौका है। यही वजह है कि उनके शेयरों में आप तेजी देख पा रहे हैं।
हंसमुख डेडिया मुंबई से हमारे साथ। हंसमुख जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछ सकते हैं
आप? गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
गुड इवनिंग।
हाँ, माय क्वेश्चन इज दैट एट दिस लेवल ऑफ मार्केट आर वी जस्टिफाइड बाय द वैल्यूएशन और डू यू थिंक द वैल्यूएशंस आर स्टिल वेरी हाई इवन आफ्टर करेक्शन?
हसमुख भाई, देर इज ऑलवेज अ डिबेट बिटवीन द हायर वैल्यूएशन एंड द लोअर वैल्यूएशन। When the Sensex is 70,000, so there will be issue whether the valuation is very high or not. In my understanding about the stock market is that there are some stocks which are the which we call as the value stocks, and where the valuation is very, very attractive. So you can enter at that value in that particular stock, and whenever you are finding that your capital has given you some reasonable return, you should book a profit and come out and make another investment. So it's always better to go for the churning thing rather than thinking about that the valuation, when the valuation will come down or when the valuation will go down. Every time there is an opportunity for the value stock, you just have to look for those value stock, and trust me, you will get good return if you are booking your profit when the market is high rather than waiting that the notional gain will be much higher when the market will be much higher.
Bharat Bhushan, Delhi se jude hue. Bharat ji, swagat aapka. Kya sawal hai?
Haan, sir, sabhi ka namaskar.
Namaskar.
Mera prashna ye hai ki, sir, chini sugar sector jo company hai na, sir, sugar sector jo company deal karti hai. हेलो
जी, जी बोले, सवाल पूछे।
सर वही सवाल पे आ रहा हूँ मैं, जो शुगर कंपनी है आखिर उनके शेयर में बढ़त क्यों नहीं हो पा रही बाकी इंडस्ट्रीज के मुकाबले? और एक दूसरा सवाल ये है सर कि हम कैसे पहचाने कि इस शेयर में ओवरबॉट की पोजीशन हो गई है या फिर ये ओवरसोल्ड जोन में है, ये हम कैसे पहचानेंगे सर? धन्यवाद।
ओके, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले आ जाता हूं। अगर बाजार पे, चूंकि आपने अच्छा टर्म यूज किया ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, ये अमूमन वही लोग ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो बाजार में नियमित तौर पर निवेश करते हैं और बाजार पर पैनी नजर रखते हैं। देखिए, आपको इसमें करना क्या है, वॉल्यूम पे नजर रखिए कि वॉल्यूम क्या है। और अगर आप डीएमए देखिएगा, डेली मूविंग एवरेज है, या अगर 3 या 5 दिन का उनका वॉल्यूम देखेंगे तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि ये जो कंपनी है इसके शेयर ओवरबॉट सिचुएशन में या ओवरसोल्ड में। आप ये भी देखिए कि उनका फ्लोटिंग स्टॉक कितना है, यानी कि कितने शेयर खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध है, और बाई सेल की इनकी पोजिशन 5 या 7 दिनों में क्या रही है, तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपका जो पहला प्रश्न था कि चीनी के जो कंपनियां हैं उनके शेयरों में क्यों तेजी नहीं आ रही, बहुत स्वाभाविक सी बात है, उनकी कीमतों को लेकर के अभी भी मुद्दा है कि क्या जो उनको कीमत मिल रही है वो उनके मुनाफे को बढ़ाने के लिए काफी है या नहीं है। और चूंकि आपको पता है कि चीनी एक राजनीतिक तौर पर भी काफी संवेदनशील मुद्दा होता है, तो इसी वजह से बहुत सारे समय में जो आप चीनी की, जिसको हम लोग कहते हैं ना एफआरपी, हम लोग फॉलो करते हैं फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जबकि बाकी फसलों में हम लोग एमएसपी फॉलो करते हैं, तो चीनी के एफआरपी को लेकर के हमेशा से इश्यू उठता रहा है। चीनी मिल कहते हैं कि उनको कम जो है वो मिल रहा है, उनका नुकसान हो रहा है, और ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए चीनी की कीमतों पर नियंत्रण रखने की कोशिश होती है। तो अभी के समय में चीनी में आपको बहुत ज्यादा दाम बढ़े इसकी उम्मीद दिख नहीं रही है।
गोपाल जॉइन्स अस फ्रॉम मुंबई, वार्म वेलकम गोपाल।
मध्यम का नमस्कार जी। सर, दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो देश का खजाना है उसके ऊपर किसका नियंत्रण रहता है, और मार्केट में जो
वी डिडंट गेट यू, व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन,
दोबारा पूछ लें आप सर।
देश का जो खजाना है वो किसके नियंत्रण में रहता है,
खजाना किसके नियंत्रण
में रहता है, पहला ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इंडेक्स देखेंगे तो आप मिड कैप स्मॉल कैप बीएससी एनएससी सब लाइफ टाइम हाई पे है, पीएसयू कंपनीज में जो भी सब हाई पे चल रहे हैं, लेकिन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में सब नीचे ही मिल जा रहे हैं, इसका कारण क्या है?
पहला जो आपका सवाल है, देखिए खजाना शब्द की जगह पे हम लोग जो यूज करते हैं वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हमारे पास जो फंड होता है उसको तीन श्रेणी में डालते हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड यानी कि समेकित निधि, दूसरा जो होता है वो कंटिंजेंसी फंड होता है जिसको हम लोग आकस्मिक निधि कहते हैं, और तीसरा जो है वो पब्लिक अकाउंट होता है जिसको हम लोग लोकलेखा कहते हैं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो होता है कंसोलिडेटेड फंड यानी कि समेकित निधि, केंद्र के स्तर पर भी है और राज्य के स्तर पर है। हमारे यहां जो व्यवस्था जिसका हम लोग अनुसरण करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल, और वेस्टमिंस्टर मॉडल का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जब तक जनता की चुने हुए प्रतिनिधि किसी भी प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाएंगे, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा, तब तक समेकित निधि में ना तो एक रूपया डाला जा सकता है ना निकाला जा सकता है। तो अगर मैं आपके शब्द लू खजाना, तो खजाने की जगह पे आप कहिएगा समेकित निधि तो ज्यादा बेहतर होगा। आकस्मिक निधि किसी भी तरह की दुर्घटना या आपात परिस्थिति में जब संसद काम नहीं कर रहा होता है तो उस फंड से पैसा लिया जाता है, और लोक लेखा जिसको पब्लिक अकाउंट कहते हैं उसका पैसा अलग अलग कार्यों में लगाया जाता है, वहां पर भी जो है वो संसद की अहम भूमिका होती है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि शेयर बाजार की स्थिति, देखिए बाजार को में बहुत ज्यादा तेजी आना या बहुत ज्यादा उछाल आना उसके पीछे बहुत सारे कारण काम करते हैं। किसी खास क्षेत्र में किसी खास समूह की कंपनियां जो है उनमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिलती है, उसके पीछे भी कई कारण होते हैं। अभी के समय में अगर आप देखेंगे कि एक तरफ जो है वो अमेरिका में महंगाई दर कम हो गई है, दूसरी तरफ भारत में चुनाव चल रहा है, और भारत में नहीं दुनिया के कई देशों में चुनाव चल रहे हैं, तो इन सबका असर है। एक खास क्षेत्र के शेयरों की अगर हम लोग बात करें, चाहे आपने एक खास समूह की बात करी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर कंपनियों के शेयरों में हमेशा से एक जिसको कहते हैं ना परसेप्शन का इश्यू होता है, उनके बुनियादी व्यवस्था में कोई कमी नहीं होती, लेकिन एक धारणा ऐसी बनी है कि ये शेयर पब्लिक सेक्टर का है तो इसलिए उसमें खरीदारी उस तरीके की होती नहीं है, जबकि उनकी संभावनाओं में कोई कमी नहीं होती है।
अतनु साहा कोलकाता से हमारे पास हैं। अतनु जी आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या सवाल है आज का?
हाँ गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जिंदा जी टू एवरीबॉडी,
गुड इवनिंग
फॉर द डे सर। वाई साइको इकोसिस्टम, वाई साइको इकोसिस्टम इज एसेंशियल फॉर देम हु आर डूइंग बिजनेस और हु आर राइट नाउ स्टार्टअप।
नहीं आतनु जी आपका सवाल स्पष्ट नहीं हो पाया, थोड़ी सी आज डिस्टर्बेंस आ रही, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन?
इकोसिस्टम व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर देम हु आर डूइंग बिजनेस और हु आर स्टार्टअप,
समथिंग टू डू विद स्टार्टअप,
दैट्स द ओनली थिंग विच आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ डिसरप्शंस बिकॉज ऑफ द वेदर और समथिंग लाइक दैट।
आतनु मे बी रिक्वेस्टेड टू कॉल अगेन फ्रॉम अ क्लियर लाइन, there is a lot of disturbance and we will address your question once you call again. Moving on, the US crude oil prices pushed past $80 with the global benchmark Brent crude also enjoying its first weekly gain since mid-April on Chinese industrial output data and US consumer prices, both of which came in more favorably than anticipated for April. Brent crude increased by 0.8% to $83.98 per barrel. The West Texas Intermediate WTI also showed gain of 1.05% to $80.06 per barrel when reports last came in.
Jaipur se Jitendra ji aa gaye hain hamare saath, bahut bahut swagat Jitendra.
हाँ जी थैंक यू सिसिक दीदी, और आप लोग को मैंने देखा था परसों टीवी पे
जी।
सिसिक जी मुझे एक दो चीज बताइएगा, एक चीज तो ओएनडीसी है, ओपन नेटवर्क डिजिटल भारत सरकार का है जो 2021 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी हफ्ते भर से जो है ये काफी इसका प्रचार आ रहा है, तो एक क्या ये फ्लिपकार्ट और अमेजन की तरह ये काम करेगा क्या? पहला प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये है सर कि पॉलिटिकल नहीं है आर्थिक है, कि अगर ये थर्ड टर्म गवर्नमेंट आती है तो भारत का आर्थिक कैसा गति दिखेगा आपको अगले 5 साल अगर आती है तो?
पहला जो प्रश्न है ओएनडीसी का, बिल्कुल आपने सही कहा, ये ओपन नेटवर्क है फॉर डिजिटल कॉमर्स है, और ये बिल्कुल जो अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उन्हीं के बराबर ये काम कर रहा है और इसमें काफी संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक सरकारी तंत्र के द्वारा जिसको है वो विकसित किया गया है, तो इसमें एक तरीके से कहा जाए एक उपभोक्ता के नाते, ग्राहक के नाते एक विकल्प मिलता है, एक बेहतर विकल्प मिलता है। हेलो
जी जी आप जवाब दें।
हाँ सर, मदन थापा सर धर्मशाला से बोल रहा हूँ।
अभी 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 होल्ड करें मदन थापा जी, अभी होल्ड करें, अभी पिछले कॉलर का जवाब चल रहा है।
दूसरा जो आपका प्रश्न था कि जो मौजूदा सरकार है वो वापस लौट के आती है सत्ता में तो अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। देखिए ये सवाल का जवाब देना बहुत ही अनिश्चितता के घेरे में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाजार में अगर आप देखें, बाजार की स्थिति को देखें, तो बाजार हमेशा क्या चाहता है कि एक व्यवस्था जो है वो उसमें एक स्थिरता बनी रहे, अस्थायित्व बना रहे, नीतियां जो है उसमें निरंतरता बनी रहे। जब ये सारी चीजें होती हैं तो उसका असर जो है वो शेयर बाजार पर भी पड़ता है। तो अब ये वापस आएंगे नहीं आएंगे ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। आज के दिन में हम इतना ही कह सकते हैं कि जो भी सरकार आए यदि वो नीतियों में स्थायित्व बनाए रखती है, निरंतरता बनाए रखती है, तो उसका फायदा पूरी अर्थव्यवस्था और बाजार को मिलता है।
मदन थापा जी अब आप आ जाएं धर्मशाला से, पूछे सवाल।
सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं सर अभी 59 ईयर ओल्ड, अभी 60 ईयर का अगले साल अगले महीने होने वाला हूँ 11 जून को
जी।
तो सर मैं अभी जॉब करता हूँ बटसाइज के मैसेज में, सेकंड जॉब है, मैं एक्स आर्मी रिटायर हूँ, सारी वाल लड़ा हुआ। तो सर मुझे अभी पैसा पीएफ का काफी अच्छा मिलेगा, तो मुझे इसमें क्या इंटरेस्ट लगेगा? और सर एक सवाल एक और है, मेरे एफडी ऐसा PNB में 8 साल हो गए, उसमें मुझे इंटरेस्ट पर वो लोग मेरा चार्ज ले रहे हैं, मुझे टैक्स कर रहे हैं, तो मुझे इसके लिए कोई आईटी कोई जमा कराना पड़ेगा टैक्स वगैरह?
ठीक है, समझ गया। दो सवाल हैं, इनका जो पीएफ मिलेगा वो टैक्सेबल होगा कि नहीं?
नहीं, इनके टैक्सेबल नहीं, अगर मैं मूल रूप से समझ पाया वो ब्याज को लेकर के पूछ रहे थे। तो बेहतर देखिए, एक तो बात सही है कि जो आपको पैसा मिलता है, आप एक रिटायर्ड भी हैं लेकिन आपको टैक्स तो देना होता है, ये तो एक सच्चाई है। हाँ, जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है चाहे वो ग्रेच्युटी के फॉर्म में हो, उनमें आपको किसी भी तरह का टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है। एक सलाह ये होगी कि जो आपको पैसा मिले उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए, एक जगह पे पैसे मत रखिएगा। कुछ पैसा आप डाकघर की योजनाओं में लगा दें, कुछ पैसा आप बैंकों में 5 साल के लिए रख लें, फिक्स डिपॉजिट करा लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा जो प्रश्न था कि पंजाब नेशनल बैंक में इनका फिक्स डिपॉजिट है, अगर आप 15G और 15H अगर देख लीजिएगा, अगर आपकी योग्यता क्या है, चूंकि आप अगर 60 साल से भी कम उम्र के हैं तो आपके लिए फॉर्म 15G है, लेकिन वहां पर यह बात निर्भर करता है कि क्या आपकी जो आय है वो टैक्स के दायरे में आती है या नहीं आती है। अगर टैक्स के दायरे में आती है तो 15G का मतलब नहीं, आपको TDS देना ही होगा, अगर आपके ब्याज की इनकम 40,000 रूपये से ज्यादा का बनता है तो।
From Noida, we are joined by Sonu Mishra. A warm welcome.
Hello.
Ji, Sonu ji, bole.
Sabko namaste.
Ji.
Mera ek sawal tha, ye jo IPOs aate hain, isme ek SME karke hota hai. Isme maine requirement hai, jo share, jo number of shares hai, wo bhi lot mein hi hota hai. Ye hota kya hai? Matlab, hum sochte hain, ye SME aur ye jo normal IPOs mein fark kya hai?
ओके देखिए, शेयर बाजार में दो तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं मेन प्लेटफॉर्म है और एक SME प्लेटफॉर्म कहते हैं। SME प्लेटफॉर्म पे जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि छोटे और मझोले उद्योग हैं, उनकी कंपनियां जो होती हैं उनके शेयरों को लिस्ट किया जाता है, उनमें भी कारोबार ठीक उसी तरीके से होता है जैसे आप किसी भी मेन प्लेटफॉर्म पे किसी एक बड़ी कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो ये आपके लिए एक विकल्प है कि आप उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनमें संभावनाएं बेहतर हो।
So very briefly, Shishir, what's your outlook for the coming week?
Coming week, it all depends upon, going by the election, and the two critical factor is, one is that what kind of interest rate indications we are going from the Federal Reserve, because inflation has come down. So we are expecting that there will be at least 1 or 2 rate cut in coming months. So that will have some impact on the market.
आज के लिए इतना ही, क्योंकि वक्त अब खत्म हो रहा है। तमाम श्रोता हमसे जुड़े, हमसे सवाल पूछे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शिशिर आपका खास तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद।
शिशिर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, इंडियन स्टॉक मार्केट एंड सैटरडेज स्पेशल सेशन ऑन अ पॉजिटिव नोट। सेंसेक्स क्रॉसेज 74,000 लेवल, निफ्टी रीचेज अबाउट 22,500। US stocks ends higher. Crude oil prices pushed past $80. Brent reaches at $83.98 per barrel. And West Texas Intermediate shows gain of 1%. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Namaskar. Market Mantra.